जीवन एक गोरख धंधा है। ऑडिबल की विशेष प्रस्तुति ओम स्वामी के विचार, ओम स्वामी की आवाज में। दिल से अरमां जो निकल जाए तो जुगनू हो जाए, और आंखों में सिमट आए तो आंसू हो जाए। जापे आहू का जो बेहू करे हू में खोकर, उसको सुल्तानिया मिल जाए वो बाहू हो जाए। बाल भी क्या ना हो किसी का जो छुरी के नीचे, हल्के असगर में कभी तीर तराजू हो जाए। आप ही अपना बरदा हो, तुम एक गोरख धंधा हो।
हम छठे प्रकरण में आ गए हैं। हमने विचार किया कि जीवन इच्छाओं का घर है और जीवन दुखों का भी एक घर है या सागर है। घोरम अनंतम क्लेश भाजनम, ऐसा अनंत का सागर है। दुखाल्य शाश्वतम श्री कृष्ण ने कहा है, ये शाश्वत दुखों का घर है। तो यदि दुख में मनुष्य आया है, उस पर हमने विचार किया कि यदि उस समय वो इस बात पर लेकर एकाग्रता बना सके कि मेरे मन की स्थिति एक सी नहीं है, जरूरी नहीं कि जो भी मेरा मन बोल रहा है वो सब सत्य ही है। स्मरण रहे, मन तो कुछ देख नहीं रहा, मन कुछ सुन नहीं रहा, मन किसी चीज का स्वाद नहीं चख रहा, मन किसी चीज को घ्राण नासिका नहीं है, मन सूंघ नहीं रहा। मन तक जो भी पहुंच रहा है चित्त के माध्यम से चिंतन होता हुआ पहुंच रहा है। तो मन एक ऐसी मनुष्य के जीवन की विडंबना है जिसके पास कोई सत्य है ही नहीं। मन के पास जो कुछ भी है वो सब यहां वहां वहां से उठाया हुआ है। कहते हैं एक बच्चा था और एक मिठाई की दुकान पे जाता है। दुकान पे जाकर वहां बोलता है कि अंकल जी मुझे एक पाव रसगुल्ला दे दीजिए। उसने बोला बेटा डिब्बे में डालूं? बोले डिब्बे में चाहे लिफाफे में कोई बात नहीं। और बांध देता है दुकानदार, एक आधा किलो गुलाब जामुन भी दे दीजिए। ठीक है, गुलाब जामुन भी बांध देता है। एक किलो बर्फी चाहिए, गुलाब जामुन से दुगनी। उसने तुम्हारे पास पैसे तो है ना? हाँ हाँ पैसे हैं बकायदा, ऐसे नहीं मैं आपसे सामान बंधवा रहा सारा। एक किलो बर्फी कर दीजिए, कर दी। ये आधा किलो काजू की बर्फी डाल दीजिए, वो भी डाल दी उसने। और ये एक पाव चमचम भी डाल दीजिए। दुकानदार ने कहा चलो सुबह आज इनके घर में कोई हो सकता है, बच्चा पास हुआ हो, कुछ किसी प्रकार से कोई उत्सव हो, इतना मेरी आज सुबह सुबह ही कमाई हो रही है, अच्छी बात है। तो वो खुश होकर हर एक में एक एक जो है टुकड़ा अधिक डाल देता है, एक किलो बर्फी। दुकानदार जब खुश होता है हमेशा एक ज्यादा दे देता है, तो सब में ज्यादा डालता है कि सुबह सुबह कमाई होगी। फिर वो कहता है कि बस इतना ही, पर एक काम करेंगे, ये ना ना डिब्बे ना लिफाफे में से निकाल देंगे, एक जगह डाल दीजिए सारा। दुकानदार ने कहा एक जगह? सारी मिठाई मैं इतनी मेहनत से बनाई है, सारी मिठाई एक जगह? एक जगह डाल दीजिए, उसने कहा। उसने सोचा हो सकता है मंदिर में बांटनी हो, वहां अलग अलग नहीं, वहां एक ऐसे ऐसे पकड़ाते हैं जो भी हाथ में आया। गर्म कर दीजिए अंकल इसको थोड़ा सा कढ़ाई में। उसने बोला बेटा ये पिघल जाएगी, ये तो तुम्हारी बर्फी जो है खोए की। कोई बात नहीं, लेने वाला मैं हूं। उसने कहा ठीक है, ₹5 उसके अलग से लगेंगे, उस हिसाब से कर लेंगे, आप चिंता मत करो, आप कर दीजिए। कढ़ाई में डाल के सारा वो गर्म कर देता है। गर्म जब हो जाता है, अंकल ये 50 ग्राम डाल दीजिए, ये जो रबड़ी बनी है ये 50 ग्राम मुझे दे दीजिए। अब दुकानदार क्या कहे? दुकानदार अब कुछ बेचारा कहने लायक नहीं। तो ऐसा क्या किया जाए कि मन दुखी ही ना हो? हंस लीजिए, कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा क्या किया जाए कि व्यक्ति का मन दुखी ना हो? क्योंकि एक बात को गौर से समझना होगा, यदि मन दुखी है उस समय का उपाय अलग है, यदि मन दुखी नहीं है और कुछ ऐसा करना है कि दुखी ना हो वो उपाय अलग है। जब सर फट रहा हो उस समय कोई आयुर्वेदिक या कोई होम्योपैथिक दवा काम नहीं करती। हो सकता है आपको इतना गुस्सा है आप गोलियां पकड़ के खिड़की से बाहर दे, मारो पीछे कर, मुझे एक सेराडॉन या जो भी होती है वो दे दो, पेनाडॉल। उस समय ऐसा चाहिए जो तुरंत असर करे। वो युक्तियां काम नहीं करेंगी जो उस समय की जाएं जब सर लगे दर्द हो सकता है, आज मैं सोया नहीं, आज मैंने खाया नहीं, आज मैंने अच्छे ढंग से विश्राम नहीं किया। तो कुछ उपाय हैं जो ध्यान इत्यादि, भजन कीर्तन जप प्रार्थना, ये करने होते हैं दुख से पहले। जब दुख आ गया उस समय तो लंगोट कसो और भाग लो, और कोई मार्ग नहीं है। उस समय तो परम ज्ञानी ही ध्यान में बैठकर अपने दुख को पीछे कर सकता है। अधिकांश समय तो हर व्यक्ति पकड़ा जाता है। दुख तो आप चले जा रहे हैं, एक मक्खी आकर जोर पर लग गई चेहरे पर, क्या कर लेंगे। ऐसे ही कई बार आप विचार में नहीं होते, तैयार नहीं होते और दुख आकर लग जाता है, क्या करें। तो ऐसा क्या है जो मनुष्य कर सके जिससे कि वो दुख में जाए ही ना? ये शायद संभव नहीं है कभी ना जाए, परंतु उसकी जो संभावना है उसको बहुत कम कर दिया जाए। ऐसा तो होता है कि किसी का घर अपना होता है, किसी के घर पर बहुत कर्ज है, किसी का घर बहुत साफ है, किसी का नहीं उतना साफ, किसी के घर में सुगंध है तो किसी घर में दुर्गंध है। घर तो सबका है तो जीवन तो सबका है, उसको रखना कैसे है वही तो सारी युक्ति है, वही तो सारा ज्ञान है। और जब मन अनमना हो जाए तो सबसे पहले मनुष्य अपनी जिंदगी में गंध को फैलाता है। उसकी अलमारियां भी गंदी, उसका कमरा भी गंदा और उसका कंप्यूटर भी गंदा। जब मन प्रसन्न हो सबसे पहले आप गंध को दूर करते हैं, क्योंकि जब मन अप्रसन्न है गंध दिखता ही नहीं। जो बहुत सारे मानसिक रोगी होते हैं, और विदेश में ऐसी कथाएं कितनी बार सुनने को मिलती हैं कि व्यक्ति 5 महीने साल या 6 महीने 2-3 साल अपने घर से बाहर ही नहीं निकला, वहीं पर वो अपनी जो खाने पीने का सामान जो है इंटरनेट से ऑर्डर कर देता था, वहीं पर आ गया और वहीं पर वो रहता था। और जब वो मर जाता है किसी को पता नहीं चलता। फिर जब उसका घर खोला जाता है पुलिस भी बेहोश होने जैसी हो जाती है, क्योंकि जब मन अप्रसन्न हो तो आपको आसपास के बढ़ते हुए गंध से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा क्या किया जाए कि मनुष्य दुख में जाए ही ना? उसके लिए 3 बहुत सुंदर चीजें बताऊंगा। जिसने जीवन में इसको धारण कर लिया उसके जीवन में दुख बहुत कम हो जाएंगे। पहली चीज है सरलता। जितना सरल जीवन होगा उतना अधिक आप सुखी होगे। जितना सरल जीवन होगा उतना अधिक मन शांत होगा। जितना अधिक आडंबर होगा, जितना अधिक दिखावा होगा, उतना अधिक जो है जीवन में दुख होगा। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत भोले होते हैं, और जो भोले होते हैं, जैसे बालक हैं, माँ बाप को हमेशा चिंता लगी रहती है कि इनका क्या बनेगा, इस बच्चे का क्या बनेगा, इस बेटी का क्या बनेगा। बहुत भोला है, बहुत भोली है, बहुत भोला है, बहुत भोली है। परंतु आप कभी देख लेना, जो सरल है, क्योंकि सरलता का अर्थ ही भोलापन है, जो बहुत एक चालाक व्यक्ति है वो सरल नहीं हो सकता। जो भोला होता है, जो सरल है, उसका प्रकृति सदैव ध्यान रखती है। आलसी रहकर, कम कार्य करकर, ना कार्य करकर भी वो बढ़िया जीवन में चलते रहते हैं। जो चालाक है, सारा वजन उस पर होता है। एक बार भूकंप आ रहा था एक गांव में, एक व्यक्ति का घर था वहां पर। बड़ी मेहनत से उसने उस घर को बनाया, मंदिर से आ रहा था, दूर से ही उसको दिख रहा है घर ऐसे ऐसे हो रहा है। उसने कहा, हे ईश्वर, मेरा यह घर बचा ले, और जो मेरा दूसरा घर है अगर वो भी बचा लिया तो इस घर को बेच के जो भी पैसे मिलेंगे मैं मंदिर की हुंडी में डाल दूंगा। मेरे दोनों घरों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो भूकंप आ जाता है, आसपास वाले सारे घर गिर जाते हैं, उसका घर बचा रहता है। भाग के वो अपना दूसरा घर देखता है, वो भी बढ़िया वहीं पर खड़ा रहता है। अब उसके मन में दुविधा शुरू होती है कि भाव में आकर बोल दिया, प्रभु हुंडी में डाल दूंगा, क्या पता मैंने घर इतना बढ़िया बनाया कि वो इसलिए ना गिरा हो। पर यह भी है कि बोला है, कहीं कल को कुछ और हो गया, कोई रोग लग गया, कुछ हो गया तो बोल दिया, भगवान तो सब जानते हैं, बड़ी समस्या होगी, क्या किया जाए। कहता नहीं, अपने वचन का पालन मैं अवश्य करूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई के वचन का पालन तो मैं अवश्य करूंगा। एक उद्घोषणा करवा देता है गांव में कि मैं अपना घर बेच रहा हूं 100 रुपए में। सारा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है। 100 रुपए में? 100 रुपए में तो ईंट नहीं आती। ये व्यक्ति घर बेच रहा है, कमाल है। वो कहता है, नहीं, बस मैंने सोचा हुआ है कि मैंने घर, ये भूकंप में बच गया, ईश्वर की कृपा है, 100 रुपए में मैंने इसको बेचना है। तो सब बोलते, मैं लेने को तैयार हूं, मैं लेने को तैयार हूं, मैं ले लेता हूं। एक शर्त है, उसने कहा, मेरी बिल्ली है, मुझे बहुत प्रिय है। अब मैं दूसरे घर में चला जाऊंगा, जो ये घर लेगा, मेरी बिल्ली यहीं रही है पिछले 4 साल से, उसको, इस बिल्ली को इसी घर में रखना होगा, बिल्ली भी उसकी। तो सबने कहा, भैया एक कटोरी दूध ही पिलाना, दिन में पिला देंगे, रख लेंगे, बिल्ली भी प्रिय है, मुफ्त में नहीं है, बिल्ली का भी कुछ मूल्य देना होगा, दे देंगे 1,00,000 रुपया। बिल्ली मेरी 1,00,000 की है, घर 100 रुपए का है। बहुत चालाक होता है ना इंसान। घर का उसने सोचा, मैं हुंडी में डाल दूंगा, बिल्ली का चेब में डाल दूंगा, घर भी रह गया, वो भी रह गया। तो वो जो साइन हो जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, साइन हो जाता है, अगले दिन उसकी बिल्ली मर जाती है। 100 रुपए में घर चला जाता है, बिल्ली का कुछ नहीं देना, वो तो मर गई। ज्यादा चलाकी तो कर नहीं सकते ना। एक शायद मैंने छोटा सा प्रसंग आपको बहुत पहले सुनाया था। 3 भिन्न भिन्न मंदिरों के पुजारी आपस में मित्र होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और कहते, भाई बहुत महंगाई हो गई है, तुम कैसे अपने घर का खर्चा चलाते हो? मंदिर वाले तो ज्यादा तनख्वाह देते नहीं, उसमें तो चल नहीं सकता घर का खर्चा। पहले वाले ने कहा, देखो तुम लोगों से क्या छुपाना, सच्ची बात है भाई, जितना भी चढ़ावा आता उसका 10% 10% निकाल के मैं एक तरफ रख लेता हूं, मैं तो वैसे करता हूं। तो दूसरे ने कहा, अब तुमसे क्या छुपाना, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं पर ऐसे भगवान से नहीं निकालता पैसे, जो भी चढ़ावा आता है मैं एक बड़ी थाली में रख लेता हूं, आंखें बंद करके ऐसे एक लाइन बना देता हूं, जो इस तरफ वो मेरा, जो उस तरफ वो भगवान का, कभी कम आ जाता है कभी थोड़ा ज्यादा भी आ जाता है, मैं सोचता हूँ यही हरी इच्छा है, हर बार तो 10% निकालना अच्छा नहीं है ना। किसने कहा, तुम तो बड़े बड़े चोर निकले, तुम पंडितों के नाम पर ब्राह्मणों के नाम पर धब्बा हो, तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा, तुम्हारा खर्चा निकल जाता है? मेरा खर्चा नहीं निकलता, पर मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, मैंने कभी ऐसे ना लाइनें ऐसे बनाई, ना ही मैंने कभी ऐसे 10% 20% ऐसे मैंने अपना कोई हिस्सा नहीं रखा हुआ, मैं तो सारा पैसा ऐसे लेके हुंडी के पास चले जाता हूँ, ऐसे हवा में ऊपर फेंक देता हूँ, प्रभु जो आपको रखना रख लो, जितना आपको चाहिए आप रख लो, जो ऊपर रह गया भगवान का, जो नीचे गिरा उसको मैं इकट्ठा करके ले जाता हूँ, क्योंकि वो उनका कृपा प्रसाद है, बरसा है साक्षात। चालाकी से कार्य तो सिद्ध हो सकता है, और यही शायद चालाकी की सुंदरता है, यही उसका आकर्षण है, चालाकी से कार्य तो सिद्ध हो सकता है, परंतु चालाकी से मन नहीं सिद्ध हो सकता, चालाकी से आत्मा नहीं सिद्ध हो सकती, चालाक होने से मनुष्य का मन शुद्ध नहीं हो सकता, और अशुद्ध द्रव्य कभी भी स्वादिष्ट नहीं होता। तो जीवन का पहला नियम है सरलता, सरल जीवन अर्थात सुखी जीवन। हमारे श्रीहरि भगवान भी इसलिए यहां सरल हैं, हमने वो विधान ही नहीं शुरू किया कि ऐसा आभूषणों का श्रृंगार करें जिसके लिए प्रचुर मात्रा में दिखावा हो। मेरे जीवन को यदि एक ही शब्द में मुझे बताना हो वो भी यही होगा, सरलता। कि दिखावा किस चीज का? दिखावे का बहुत बोझ होता है, हमेशा बनाकर रखना पड़ता है। सरल हैं तो सरल हैं, बचपन में हमें कभी कोई नया मित्र बने तो उसको यदि जन्मदिन पर कोई उपहार देना होता था तो माता रानी हमेशा कहती थी कि जन्मदिन पर मत दो बेटा, किसी भी और दिन पर दे दो, क्योंकि अगले साल पता नहीं पैसे होंगे, साधन होगा या नहीं देने का, अगले साल पता नहीं वैसी मित्रता होगी या नहीं, तो यदि अगले वर्ष नहीं कर पाएंगे तो दूसरे को बहुत कष्ट होगा, एक साल तो कर दिया, 2 साल कर दिया, तीसरे साल कैसे करोगे, चौथे साल कैसे करोगे, हर वर्ष तो दे नहीं सकते तोहफा किसी को। तो जिस चीज की रीत पड़ जाए, जिस चीज की एक एक ट्रेडिशन ही बन जाए, जिसको बोलते हैं रिवाज बन जाए, वो मुश्किल होती है। दिखावे का यदि रिवाज डाल लेंगे तो दिखावा ही करना पड़ेगा, यदि सरलता का रिवाज डाल लेंगे तो सब आनंद से बैठेंगे। तो सरलता सुख का मूल है, और इसको धारण किया जाता है उस समय जब अभी दुख ने आकर दरवाजे पर दस्तक नहीं की है। जिस समय दुख भीतर आ गया है एक बार, फिर ये काम नहीं करेगी। स्मरण रहे, इस प्रकरण में हम उस पर चिंतन कर रहे हैं कि क्या किया जाए कि दुख आए ही ना। पंचम प्रकरण में था जब दुख आ जाए तो क्या है, अभी है कि दुख अभी आया नहीं, क्या किया जाए कि आए ही ना। यदि दिखावे का दुख ही नहीं रहा तो कोई समस्या ही नहीं। मेरा तो शुरू से सिद्धांत रहा है, किसी दुकान पर चढ़ो, वहां चीज देखो, दुकान में जो सामान बेच रहा है वो तो आपको बढ़िया से बढ़िया सामान ही दिखाएगा। मैं तो शुरू से जाकर निडर होकर बोल देता था कि मैं ये नहीं ले सकता भाई, मेरे लिए बहुत महंगा है, इतना मैंने रखा है बचाकर, इसमें जो दे सकते हो दे दो। फिर वो बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं, इससे ले सकते हैं। मुझे नहीं लेना, पहले कमाना है फिर लेना है। सरलता से मन में सुकून रहता है। इच्छा पूर्ति से सुकून नहीं मिलता, क्षणिक होता है, परंतु सरलता से सुकून रहेगा। पहला है सरल जीवन, दूसरा है सरल व्यवहार। व्यवहार में एक सच्चाई होनी चाहिए, व्यवहार में एक विनम्रता होनी चाहिए, व्यवहार में एक प्रेम होना चाहिए, मनुष्य के व्यवहार में एक आत्मीयता होनी चाहिए। वो आ गई यदि व्यवहार में, तो आपका 70% काम हो गया। एक संत मैंने सुना प्रवचन दे रहे थे कि ईश्वर का नाम जपने से, उनका चिंतन करने से मनुष्य का मन जो है शुद्ध होता है। एक वहां पर संशयात्मा बैठा था, उसके हृदय में संशय था। उसने कहा, महाराज एक आपसे प्रश्न पूछना था। पूछिए। ऐसा कैसे हो सकता है, एक नाम को बार बार जपने से, ये आपको लगता नहीं थोड़ा मूढ़ता वाली बात है, मूर्खता वाली बात है? एक नाम को जपने से कैसे मन शुद्ध हो जाएगा? मुझे तो इसमें कुछ सत्य प्रतीत नहीं हो रहा, उस व्यक्ति ने कहा। तो संत ने कहा, इस बेवकूफ को किसने लाया है अंदर, इस गधे को निकाल के बाहर कर दो, ये इस सभा में बैठने का अधिकारी नहीं है, इसको बद्री का आश्रम भेजो। मजाक कर रहा हूं। उन्होंने कहा, ये यहां क्यों बैठा हुआ है? वो व्यक्ति संपन्न था। जो संपन्न होता है उसमें एक स्वाभाविक स्वरूप से एक अहंकार होता है, ना जाने कैसे आ जाता है पर आ जाता है। जेब में बहुत नोट पड़े होना, आपकी चाल बदल जाती है, एक अलग ही हाव भाव हो जाता है व्यक्ति का। पैसा सबको समझ भी दे देता है। पैसे वाला व्यक्ति यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे बहुत समझदारी वाली बातें करेगा। तो उन्होंने कहा कि इसको, ये अधिकारी नहीं है, ये कुपात्र है, ये पात्र नहीं है इस सभा में बैठने का, इस मूड को, इस दुष्ट को बाहर कर दो। वो संपन्न था, उसको क्रोध आ जाता है, कहता आप अपने आप को क्या समझते हैं, आपके जैसे 3600 संत मेरे दरवाजे पर आते हैं, इस संस्था को, उस संस्था को मैंने इतना दान दिया हुआ है, वहां पर मैंने तालाब बनवाया है, वहां पर मैंने गौशाला बनवाई है, उस फला शहर में मेरी धर्मशाला चल रही है, बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, अपने शुभ कर्म जो है गिनाने शुरू कर देता है। तो संत ने कहा, भाई आप तो बहुत संपन्न हैं, मैं नहीं जानता था, आप बैठ जाइए कोई बात नहीं, पर इतना जरूर बता दीजिए अभी आपको कैसा लग रहा है। मुझे बहुत क्रोध आ रहा है और मुझे आप बहुत बुरे लग रहे हैं इस समय, और मुझे आप संत नहीं असंत प्रतीत होते हैं, असाधु प्रतीत हो रहे हैं। संत ने कहा, अरे सिर्फ मेरे 3-4 शब्दों से कि तुम दुष्ट हो, कुपात्र हो, मूढ़ हो, मूर्ख हो, बस ये 4 शब्दों से तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? शब्द ही तो हैं, यदि शब्द तुम्हें इतना बुरा महसूस करवा सकते हैं तो तुम इसमें संशय क्यों रख रहे हो कि शब्द से मनुष्य अच्छा भी महसूस कर सकता है। कि शब्द से मनुष्य शुद्ध होता है। सरल जीवन और शुद्ध व्यवहार, यदि व्यवहार को अपने विनम्र कर लिया तो उसे एक बड़ी सुंदर बात होगी। जिसके साथ आपका व्यवहार अच्छा है, कम से कम उसके हृदय से आपके लिए कोई बद्दुआ तो नहीं निकलेगी। हो सकता है वो जले आपके धन से, आपके मान से, प्रतिष्ठा से, किसी से भी, परंतु कम से कम उसके हृदय में से तो कुछ ऐसा भाव नहीं निकलेगा, अरे ये व्यक्ति मर जाए या ये रोगी हो जाए या इसका नाश हो जाए। और व्यवहार से ही तो मनुष्य का पता चलेगा, व्यवहार ही मनुष्य का प्रथम परिचय होता है किसी भी चीज में। व्यवहार नहीं तो लाख साधना हो, लाख सिद्धि हो, किस काम की? मुझे तो नहीं लगता उससे कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध होगा मनुष्य का। तो सरल जीवन और सरल व्यवहार। कहते हैं महाराष्ट्र की यह सत्य घटना है, मैंने सुना था, हो सकता सत्य ना भी हो, कि एक चोर था महाराष्ट्र में। पता चला बहुत सारा माल वो चोरी करके भाग के पंजाब आ गया। महाराष्ट्र की पुलिस ने उसकी 5-6 फोटोएं ले रखी थी, इस तरफ से, बाईं तरफ से, दाईं तरफ से, आगे से, पीछे से, 6 फोटो उन्होंने पंजाब पुलिस को भिजवा दी फटाफट कि ये चोर है, ये पकड़ना है। एक महीना बीत जाता है, पंजाब पुलिस की ओर से कोई खबर नहीं जाती। तो वहां का जो डीजीपी होता है, यहां के डीजीपी को बात करते हैं, भाई क्या कर रहे हो आप, पकड़ा जाए, इतने सुराग दिए आपको, इतने उसकी फोटो भेज दी, आपके उस राज्य में है, उसको पकड़ो, उसका कुछ करो। पर वो हाथ नहीं आता। फिर कॉल किया, फिर जो वहां के मुख्यमंत्री होते हैं उनका फोन जाता है, तो प्रेशर बढ़ता चला जाता है। फिर पंजाब पुलिस की ओर से एक फैक्स जाता है, 6 के 6 पकड़े गए जी, आ जाओ, 6 के 6 हमने पकड़ लिए हैं, 6 फोटोएं भेजी थी, 6 चोरियां अपना कबूल कर चुके हैं कि हमने चोरी की है, आ जाइए, ले जाइए उनको आकर। दुख तो एक ही है, मन तो एक ही है, अपने भिन्न भिन्न स्वरूप दिखाता है, और हम अज्ञानता में समझ बैठते हैं कि ये अलग है। जीवन में हमारे चाहे लाख लोग हों, याद रहे कि एक ही है सामने, वो भी तब तक जब तक अज्ञानता है, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, फिर एक भी नहीं है। जिस प्रकार मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी पाइप हो, उसका मुख 2 फुट चौड़ा हो, वहां से पानी का वेग बह रहा है, उसके आगे एक कुप्पी लगी हो जिसके आगे एक छोटी सी नाली हो जो मात्र 1/2 इंच की हो, पानी का वेग 2 फुट रह जाएगा या 1/2 इंच रह जाएगा? स्वाभाविक है 1/2 इंच रह जाएगा। तो मन कितना संकीर्ण है या कितना विशाल है, उसी पर निर्भर करता है कि आप कितने वेग से आगे बढ़ सकते हो जीवन में। वहां से तो हमेशा वही आ रहा है, उतना ही, ब्रह्मांड तो सबको उतना ही दे रहा है, सूर्य तो सबके लिए उतना ही चमक रहे हैं, हम कितना उसको धारण करके, ग्रहण करके, उसमें से बाहर कितना जा रहा है, ये मन पर निर्भर करता है। सरल व्यवहार विनम्र, सरल जीवन विनम्र व्यवहार, और तीसरा है मनुष्य का सबसे बड़ा जो आभूषण होता है वो होता है चरित्र। और चरित्र से मैं नैतिक नैतिक के पछड़े में नहीं डाल रहा आपको, वो आपका व्यक्तिगत मामला है, वो सब कोई जानते हैं कि वो कितने पानी में खड़े हैं और जो वो कर रहे हैं उचित है या अनुचित है। चरित्र से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप स्वयं पर और दूसरे आप पर कितना भरोसा कर सकते हैं। जलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को नाम दिया था उसका अमीर खुसरो, नहीं तो उनका नाम कुछ और था, मुझे वो स्मरण नहीं है पूरा क्या नाम था उनका। तो कालांतर में फिर सब उनको अमीर खुसरो के नाम से ही जानने लग गए। अब निजामुद्दीन औलिया जो थे अमीर खुसरो के गुरु थे, और अमीर खुसरो का बहुत गहरा संबंध था अपने गुरु के साथ, इतना कि जो औलिया थे वो बोलते थे कि मुझे अपने मरने का भय नहीं है, पर मुझे इतना पता है यदि मैं मर गया तो तुम भी नहीं बचोगे। और इस बात में बहुत सत्य था, क्योंकि उनको बहुत ही घोर प्रीति थी अपने गुरु के साथ। तो अमीर खुसरो हमेशा बोलते थे निजामुद्दीन औलिया के, हजरत इसमें तो दो राय नहीं है, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो, ये संसार में तो मुझे रोजी रोटी के लिए जीना पड़ता है। तो एक बार वहां के राजा ने तय कर लिया कि निजामुद्दीन औलिया है, इसको खत्म कर दो, क्योंकि वो राजा के आगे झुकते नहीं थे। वो कहते थे मैं सिर्फ खुदा के आगे झुकूंगा। अमीर खुसरो को यह बात पता चल गई। जैसे ही पता चली, उसने भागकर अपने गुरु को बोल दिया, हजरत आप दिल्ली से निकल जाएं, मैं आपको बाद में आकर मिलता हूं, राजा ने फरमान निकाल दिया है कि आपका सर कलम होना चाहिए। तो औलिया ने बोला निजामुद्दीन के, अरे खुसरो, ये कितनी भारी जोखिम में तुमने स्वयं को डाल लिया है, राजा को पता तो चल जाएगा, मुझ तक खबर पहुंची अगर मैं जाता हूं, पहले भाग जाता हूं, और अगर ऐसा हो जाता है तो राजा तुम्हें भी मरवा देगा, क्योंकि उसको पता है उसके पूरी सभा में एकमात्र तुम हो जिसका मेरे साथ संपर्क है। तुम अपने प्राणों को ऐसे जोखिम में डाल दिया। उसने कहा हजरत बताने से तो सिर्फ जान ही जाएगी ना, ज्यादा से ज्यादा, आपको बताने से अधिक क्या हो जाएगा, मेरी जान जाएगी, परंतु यदि ना बताता, आप मेरे गुरु हैं, मेरे हजरत हैं, एक उनकी बड़ी सुंदर सूफी निजामुद्दीन औलिया तू पीर मेरा, कि आप मेरे पीर हैं, अगर ना बताता तो ईमान चला जाता, तो जान से ज्यादा प्रिय मुझे ईमान है, इसलिए ना बताने का तो प्रश्न ही नहीं, वो तो मुझे बताना ही था। जिस मनुष्य के पास चरित्र का बल होता है, मैं जीवन में किसी और चीज की गारंटी दे सकूं ना या ना सकूं, मुझे नहीं पता दे सकूं या ना सकूं, इस चीज की गारंटी अवश्य दे सकता हूं, जिस मनुष्य के पास चरित्र का बल होता है उसके लिए पूरा ब्रह्मांड आकर उसकी दिशा में जाने को तैयार हो जाता है। ऐसा कोई रह नहीं जाता, उसके जीवन की इच्छा शेष या उसका कार्य शेष, क्योंकि जो किसी को वचन देकर पीछे ना हटे, जो निर्बल के लिए खड़ा हो सके, जो अपने बल को रक्षा के लिए प्रयोग कर सके, ऐसा व्यक्ति ईश्वर हो जाता है। इसमें मुझे इतना सा भी संशय नहीं है। दिल से अरमां जो निकल जाए तो जुगनू हो जाए, और आंखों में सिमट आए तो आंसू हो जाए। जापया हू का जो बेहू करे हू में खोकर, उसको सुल्तानिया मिल जाए वो बाहू हो जाए। बाल बीका ना किसी का जो हो छुरी के नीचे, हल्के असगर में कभी तीर तराजू हो जाए। हैरत की एक दुनिया हो तुम एक गोरख धंधा हो। षष्ठ प्रकरण में इतना ही।